आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। हमारी चर्चा का विषय है कश्मीर में सैनिक और कंपोजिट कॉलोनियों के निर्माण का विवाद। भारत नियंत्रित कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों के लिए विशेष कॉलोनियों के निर्माण का मुद्दा गर्माया हुआ है। सरकार की इस योजना का घाटी में घोर विरोध किया जा रहा है और व्यापक रूप से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अलगाववादी नेताओं ने राज्य की पीडीपी सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि वो आग से खेल रही है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी और जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक ने कहा कि यदि कश्मीर में सैनिक कॉलोनियों के निर्माण की योजना पर काम हुआ तो कश्मीरी जनता आंदोलन शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर को दूसरा फिलिस्तीन नहीं बनने देंगे। गिलानी ने कहा कि ये योजना कश्मीरी जनता के गले पर छुरी रखने के समान है और ये कश्मीरी जनता के लिए प्रतिरोध करो या हमेशा के लिए खत्म हो जाओ जैसी स्थिति है। यदि इस नाजुक अवसर पर कोई ढिलाई बरती गई तो ये हमारे अस्तित्व, पहचान और आंदोलन के लिए आखिरी कील साबित होगी और हम अपने वतन में रहकर भी बेवतन हो जाएंगे। गिलानी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को भारत के 29 राज्यों को छोड़कर विवादित राज्य जम्मू व कश्मीर में ही बसाने का कोई औचित्य नहीं है और ये खुला हुआ अतिक्रमण है। कश्मीर के भीतर हर सतह पर इस योजना का विरोध किया गया है। ये विवाद उस समय खड़ा हुआ जब ये खबर आई कि सरकार ने कश्मीर के बडगाम क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के लिए विशेष कॉलोनियों के निर्माण के लिए जमीन निर्धारित कर दी है और केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य सरकार का भी समर्थन मिल गया है। ये खबर चारों ओर फैलते ही पहले से तनावग्रस्त कश्मीर में तनाव और बढ़ गया और कई स्थानों पर प्रदर्शन होने लगे। इंजीनियर रशीद ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और इस अवसर पर एक भाषण भी दिया। इंजीनियर रशीद कश्मीर के निर्दलीय विधायक हैं।
वादा किया था मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा वो हिंदुस्तान चाहते हैं या पाकिस्तान चाहते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान वो वादा भूल चुका है। आज लड़ा ये चीज क्या कश्मीर में बना हुआ सैनिक कॉलोनी, क्या कश्मीर में बना हुआ कंपोजिट टाउनशिप, हम ये कहना चाहेंगे या कोई इसे निकालनी नहीं बनेगी, बनेगी तो कश्मीरियों की लाख रुपए बनेगी।
अनिल कौल पूर्व सैनिक हैं और उनका मानना है कि कश्मीर में सैनिकों के लिए अलग कॉलोनियां बननी चाहिए जिस तरह देश के अन्य भागों में इस प्रकार की कॉलोनियां बनाई गई हैं। ये बात उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में कही।
तो इसके मतलब ये है कि हम किसी भी स्टेट में जा सकते हैं लेकिन कश्मीर में नहीं जा सकते। हालांकि मैं कश्मीरी हूँ, मैं खुद कश्मीर नहीं जा सकता। द पॉइंट इज कि आप जो ये सैनिक कॉलोनी की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी मजेदार बात है कि यहाँ पे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लोग किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं। लिहाजा मेरे हिसाब से हर एक स्टेट से इनको निकाल के वापस कश्मीर भेज दीजिए। फौजी रिस्क लेने को तैयार है, एक्स सर्विसमैन रिस्क लेने को तैयार है, कश्मीरी पंडित विल नॉट टेक अ रिस्क राइट नाउ।
भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ये तर्क देते हैं कि जब देश के अन्य भागों में सैनिकों के लिए कॉलोनियां बनाई जा सकती हैं, तो कश्मीर में क्यों नहीं बनाई जा सकती।
देश भर में फौजी कॉलोनी होते हैं, मसलन आप हरियाणा में चले जाए, सेक्टर 49 फरीदाबाद में चले जाइए, वहां सैनिक कॉलोनी है पूरी, ऐसे पूरी जगह में है देश में। और जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी है, कश्मीर को तो छोड़ दीजिए, अभी बातचीत चल रही है कश्मीर की, जम्मू में भी फौजी कॉलोनी है जो शेख अब्दुल्ला के समय बनी थी, सैनिक कॉलोनी है वहां। मुझे जो सबसे कष्टदायक लगा, मैं रिसर्च कर रहा था इस पूरे सब्जेक्ट में, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार का बयान बड़े बड़े नेताओं ने दिया है, इंक्लूडिंग फ्रॉम एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस। उनका कहना है कि अगर ये बाहर के लोग आके बस जाएंगे तो हमारी डेमोग्राफी, और कैटेगोरिकली कहा है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की डेमोग्राफी बिगड़ जाएगी। तो ये क्लियर केस ऑफ कम्युनलाइजेशन है कि इसको धर्म के आधार पर आप एक जमीन को, मतलब आप डेमोग्राफी बिगड़ जाएगी का अर्थ है कि या हिंदू मुस्लिम अनुपात बिगड़ जाएगा। ये आप लोग जो सो कॉल्ड सेक्युलर बने हुए हैं, अब ये ऑर्डर है कि नहीं है ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे, मगर ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग बने हुए हैं ये बताएं, जब मुस्लिम के अनुपात कम हो जाती है तब तो ये सेक्युलर कहलाते हैं, और जब यही हम आसाम में या बंगाल में हिंदुओं के लिए बोलते हैं तो हम एकदम कम्युनल हो जाते हैं। ये पहले सेक्युलर और कम्युनलिज्म की डेफिनेशन को बताएं, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये बहुत सेंसिटिव इशू इसलिए है क्योंकि जब हम सेना को बाहर का कह देते हैं, मुझे लगता है प्रखर प्रवक्ताओं को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि सेना को बाहर का कहे। सेना हमारी ही है, अगर हम सेना नहीं होगी तो हम बाहर के हो जाएंगे, हम तुरंत खत्म हो जाएगा सब कुछ, और कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा। देखिए 370 हम हटाना चाहते हैं, ये हमारे मैंडेट में है, हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारी चाहत में है, हमारे रग रग में है, मगर जो हमें मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर में वो मैंडेट हमें अलाउ नहीं करता है, और जो भारत में भी मैंडेट मिला है वो, अब राज्यसभा में हम साधारण बिलों के लिए तो कैसे लड़ रहे हैं आप देख रहे हैं, जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, और वो भी आप आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, वो हम कर नहीं पाएंगे।
कांग्रेस के नेता मीम अफजल अलग राय रखते हैं।
जिस खत्ते को आपने एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस में स्पेशल स्टेटस दिया है और उसके जरिए से कुछ शराइत भी नाफिज की है, तो आपको उसका पास तो रखना पड़ेगा, और ये लॉ हब पर अप्लाई होगा कोई भी हो। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग कश्मीर से बाहर रहते हैं या बाहर के हैं, अगर वो सिपाही हैं, अगर वो सैनिक हैं, तो यकीनन जो भी आदमी रिटायरमेंट के बाद अपने इलाके में चाहता है, कोशिश करता है कि उसको वहां पर जगह मिले, इसलिए बहुत सारे सैनिक अलग अलग जगहों पर डिमांड करते हैं। अगर कश्मीर के सैनिक इस तरह की डिमांड कर रहे हैं जैसे कि महबूबा मुफ्ती कह रही है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं समझता हूं इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि वो कानून से टकराता है 370 से, इसका फैसला तो अदालत ही कर सकती है कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री किस काम के लिए लेगी, और डिफेंस मिनिस्ट्री किस काम के लिए लेती है, सुन लीजिए मेरी बात, वो सिर्फ डिफेंस पर्पसेस के लिए लेती है।
इस मुद्दे को विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जोरदार तरीके से उठाया और ये सवाल किया कि जो सैनिक कॉलोनियां बनने जा रही हैं, राज्य सरकार उनके बारे में बताए कि क्या कश्मीरी सैनिकों को उनमें बसाया जाएगा या अन्य राज्यों के पूर्व सैनिकों को भी वहां घर दिए जाएंगे।
केंद्र हुकूमत से हमें जवाब चाहिए, ये सैनिक कॉलोनी जो प्रपोज किया जा रहा है किसके लिए, लैंड की ओनरशिप जो है वो किसके हाथ में रहेगी। अगर लैंड की ओनरशिप आप सैनिक बोर्ड को ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या गारंटी है कि वहां जो अलॉटीज होंगे वो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट होंगे, और अगर रीसेल होगा तो वो नॉन स्टेट सब्जेक्ट को रीसेल नहीं होगा। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हम अपने स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए कॉलोनी बनाए किसी को एतराज नहीं, लेकिन अगर कॉलोनी बना के हम नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को वहां अकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं तो ये हमारे आईन, ये हमारे कानून और ये हमारे जज्बात के खिलाफ।
कहा जाता है कि कश्मीर में जिस समय गवर्नर राज था उस समय राज्य सरकार से मांग की गई थी कि वो पूर्व सैनिकों के लिए सैनिक कॉलोनी बनाने हेतु कश्मीर में जमीन दे। बहरहाल राज्य की महबूबा मुफ्ती सरकार ने कहा है कि पूर्व सैनिकों के लिए कॉलोनियों के निर्माण हेतु जमीन आवंटित नहीं की गई है।
क्या जो आप सैनिक कॉलोनी की बात बार बार उठा रहे हैं, मीडिया में आ रही है, पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई भी लैंड अलॉट नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि जो डिमांड है जैसे वो कोई बाहर के सैनिकों की नहीं है, वो जो जम्मू कश्मीर चाहे कुपवाड़ा से हो, बारामूला से हो, कठुआ से हो, किसी भी जम्मू कश्मीर के पार्ट में जो रहने वाला यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट, अगर वो सैनिक रहा है रिटायरमेंट के बाद, उनकी ये एक डिमांड है, हमें कहीं जमीन दे दीजिए सर पुलिस, मगर इसमें आज तक सरकार ने कोई लैंड अलॉट नहीं किए। मैं उम्मीद करती हूँ जो उमर साहब कल कोई बात कर रहे थे उनके पास, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं, एक वजीर आला रह चुके हैं, आपको याद होगा कुछ देर पहले उन्होंने एक फोटो लगाई थी 2010 की अपने ट्विटर में, जिसमें उनके टाइम की फोटो थी और उसमें वो पिटाई हो रही थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बार उन्होंने ये गलती दोहराई ना हो, क्योंकि उन्होंने किसी कागज का और वगैरह वगैरह रेफर किया, मैं उम्मीद करती हूँ उनके कागज बराबर हो। मगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एक तवारीखी फैसला किया, बहुत मुश्किल फैसला था, वो इसलिए नहीं किया कि हमारे पास जो हमारे जम्मू कश्मीर का तशख्स है उसको जख्म पहुंचे, बल्कि इसलिए किया कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का तशख्स है, जो हमारा एक इस मुल्क में अपनी एक आइडेंटिटी है उसको कायम रखने के लिए, और जब तक हम लोग हैं, क्योंकि हम सब ये जितने भी लोग हैं, चाहे बीजेपी हैं, हम हैं, हम जम्मू कश्मीर के आईन और इस मुल्क के आईन की कसम खा के यहाँ इस सेक्रेटरीट में आते हैं।
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को कुछ टीकाकार विवाद दबाने की कोशिश कह रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि ये मुद्दा जब उमर अब्दुल्ला ने उठाया है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ सच्चाई जरूर होगी। लेकिन टीकाकारों की इन अटकलों को महबूबा मुफ्ती खारिज कर चुकी हैं। कश्मीर का मामला संवेदनशील समझा जाता है और इसे भारत के संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है। भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सहित कुछ गलियारे बहुत समय से राज्य का ये विशेष दर्जा समाप्त किए जाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन कश्मीर के भीतर इसका घोर विरोध किया जाता है। कश्मीर से बाहर भारत में कुछ गलियारों का ये मानना है कि भारतीय संविधान की धारा 370 कश्मीर को भारत से जोड़े रखने का मजबूत माध्यम है। यदि इस धारा को समाप्त किया गया तो कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रख पाना कठिन होगा। इन गलियारों का कहना है कि कश्मीर ही नहीं, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम को भी भारतीय संविधान में विशिष्टताएं दी गई हैं और ये भारत की बहुलतावादी पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है।